अब आगे आपने देखा कि देवांश को रुद्र के पागलपन का एहसास होता है और दिशा को रूही की चिंता होती है। रुद्र रूही को डराता है और उसे चुपचाप बाहर आने के लिए कहता है। प्रीता को गाउन पहनने की बात पर रणवीर दादाजी गुस्सा करते हैं और उसे किसी और के बारे में सोचने से मना करते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 24। वहीं दूसरी तरफ धीरज के कमरे में धीरज सुमन को दीवार से लगाए हुए अपने मोबाइल में परी ने जो फोटो भेजा था उस फोटो को दिखाते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, सुमन, क्या तुम इस तरीके के कपड़े पहन सबके सामने जाना चाहती थी जिसमें तुम्हारे शरीर के ज्यादातर हिस्से दिख रहे हैं? क्या तुम ये पहनकर बाकी लोगों के सामने जाओगी? धीरज की कड़क आवाज सुन सुमन जी बोली, नहीं नहीं, ये वे गाउन नहीं है जो मैंने पसंद की थी। आपको परी ने दूसरी फोटो भेजी है। मैं भला ऐसी ड्रेस कहाँ पहनती हूँ? सुमन की बात सुनकर धीरज गुस्से में बोले, सुमन, बंद कीजिए झूठ बोलना। मुझे अच्छे से पता है कि आप क्या पहन सकती हैं और क्या नहीं। अगर मैंने परी की बात नहीं सुनी होती तो आप ये ड्रेस जरूर पहनती, जैसे शादी के पहले पहना करती थी। तभी तो आपके आगे पीछे इतने आशिक घुमा करते थे। वे तो मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है, वरना आप अब भी पता नहीं कितने आशिक लेकर घूमती। धीरज जी की बात सुनकर सुमन भी गुस्से से कहती हैं, वे मेरे आशिक नहीं थे, वे सिर्फ मेरे दोस्त थे। लेकिन आपकी वजह से मेरे पास मेरा एक भी दोस्त नहीं है। आपकी वजह से मेरे सारे दोस्त मुझसे दूर हो गए हैं और अब आप मुझे अपनी पसंद की ड्रेस भी पहनने नहीं देते। सुमन जी की बातों को सुनकर धीरज बोले, सुमन, आपको जो दोस्त लगते थे ना, वे आपके दोस्त नहीं थे। अगर मैं नहीं आता तो कब का आपके उन दोस्तों में से किसी ना किसी ने आपको प्रपोज कर दिया होता और आप भी खुशी खुशी उसकी शादी कर चुकी होती। सुमन, जो अब धीरज से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, वे बिना सोचे समझे ही गुस्से से बोली, अच्छा ही होता ना कि उनमें से ही किसी ने मुझे प्रपोज कर दिया होता और मैं उनके शादी कर लेती। कम के कम मैं आप जैसे सनकी इंसान से तो बच जाती। सुमन का इतना बोलना ही था कि धीरज की आंखें खतरनाक हो जाती है। वहीं सुमन को जब अपने आसपास ठंड का एहसास होता है तो वे अपनी नज़रें उठा धीरज को देखती है और धीरज की खतरनाक आंखों को देख वे डर जाती है। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जल्दी जल्दी में क्या बोल दिया। वे अपने मुंह पर हाथ रख धीरज को देख अपनी हकलाती आवाज़ में कहती हैं, धीरज, मेरा वे मतलब नहीं। सुमन ने इतना बोला ही था कि सुमन की एक दर्द भरी चीख निकल जाती है, क्योंकि धीरज ने सुमन के गले पर तेज बाइट किया था। दर्द की वजह से सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे अपने गले पर जहां अभी अभी धीरज ने बाइट किया था वहां पर अपना हाथ रख अपनी आंसू भरी आंखों को धीरज को देखने लगती है। वहीं धीरज अपनी सर्द आवाज में सुमन को धमकी देते हुए बोला, सुमन जी, क्या कहा आपने कि आप किसी और से शादी करती? आज के बाद अगर मैंने आपके मुंह से इस तरह की बात निकलते हुए देखी तो मैं आपकी जुबान ही काट दूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ आजकल तुम्हारी जुबान काफी लंबी हो गई है। धीरज जी की बात सुनकर सुमन अपने मुंह पर हाथ रख अपना सर ना में हिला देती है। वहीं धीरज सुमन को डरता देख एक डेविल स्माइल लिए हुए कहते हैं, सुमन, आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी हद में रहें, वरना जिस दिन मैंने अपनी हद पार कर दी ना तो उस दिन आपको मुझे बर्दाश्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा। इतना बोल वे सुमन को वही छोड़ स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं सुमन धीरज को जाता देख एक चैन की सांस लेते हुए कहती है, सनकी कहीं के। वहीं दूसरी तरफ मॉल में रुद्र रूही को लेकर मॉल के अंदर जाता है। इस मॉल में स्पेशली चूड़ियां ही मिलती थीं। इस मॉल में काफ़ी खूबसूरत और एक्सपेंसिव चूड़ियां मिलती हैं। ये मॉल चूड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अमीर के अमीर इंसान इस मॉल में चूड़ियां लेने आता है। वहीं रुद्र जैसे ही मॉल के अंदर आता है वैसे ही मैनेजर भागते भागते रुद्र के स्वागत में आते हुए बोला, वेलकम सर, वेलकम। आप मुझे पहले बताते कि आप इस मॉल में आने वाले हैं तो मैं आपके स्वागत की पूरी तैयारियां करवा कर रखता। रुद्र मैनेजर की बात सुनकर अपनी रौबदार आवाज़ में कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ की सबसे खूबसूरत चूड़ियाँ दिखाओ। रुद्र की बात सुनकर मैनेजर जल्दी से अपना सर हिलाते हुए बोला, जी जी सर, आप मेरे साथ चलिए। इतना बोल मैनेजर रुद्र को VIP एरिया की तरफ ले जाने लगता है और एक सर्वेंट को बोल रुद्र के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम करने को बोल देता है। दरअसल रुद्र ही इस मॉल का मालिक था, इसलिए मैनेजर रुद्र की खातेदारी में कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। मैनेजर रुद्र को लेकर चूड़ियाँ के सेक्शन में पहुँचता है और उसे चेयर ऑफर करते हुए कहता है, सर, आप बैठिए, मैं मैम के लिए चूड़ियाँ निकलवाता हूँ। इतना बोल मैनेजर वहाँ के लेडी एम्प्लॉय को अच्छे से समझा देता है कि उन्हें क्या करना है। वहीं रुद्र एक रोप के साथ चेयर पर बैठ जाता है और रूही को बैठने का इशारा करता है। रूही रुद्र को देख अपना चेहरा घुमा लेती है, जिसे देख रुद्र रूही का हाथ पकड़ उसे खींच अपनी बगल वाली चेयर पर बैठा लेता है, जिसे देख रूही गुस्से भरी नजरों से रुद्र को देखने लगती है। वहीं रुद्र रूही को खुद को यूं देखता हुआ पाता है तो रूही के करीब जा धीरे से कहता है, रूह, ऐसे ना देखो, वरना मैं तुम्हारी इन नज़रों को देख पूरी तरह तुम्हारे पीछे पागल ना हो जाऊं। रुद्र का इतना बोलना ही था कि रूही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है और अपनी आंखों में बह रहे आंसुओं को अपने हाथों से साफ करने लगती है। वहीं अमन जो रुद्र के पीछे ही खड़ा था और सब कुछ देख रहा था, उसे रूही के लिए काफी बुरा लग रहा था कि कहां प्यारी सी और मासूम की लड़की इस शैतान के हाथ लग गई। और जब से इस शैतान की नजरों के सामने आई है, तब से ये शैतान बेचारी मासूम सी लड़की को परेशान ही किए जा रहा था। उसे रूही पर काफी तरस आ रहा था, क्योंकि उसे अब तक समझ में आ गया था कि उसका शैतान बॉस रूही से क्या चाहता है, और उसे ये भी पता था कि अब उसके शैतान बॉस से रूही को कोई बचा भी नहीं सकता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश की कार में, देवांश जो कब से दिशा को लेकर इधर उधर घूम रहा था, साथ ही साथ दिशा को अपने करीब अपने साथ यूं जाता देख मन ही मन काफी खुश भी था। वे चाहता तो रुद्र के पास तुरंत ही पहुंच सकता था, पर उसे मालूम था कि अगर वे रुद्र के पास पहुंच भी गया तो वे कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके रुद्र भाई करेंगे वही जो वे करना चाहते थे। इसलिए वे दिशा को यहां से वहां घुमा टाइम पास कर दिशा के साथ अपनी लॉन्ग ड्राइव एंजॉय कर रहा था। वहीं दिशा देवांश को कब से इधर से उधर बेवजह गाड़ी चलाता देख गुस्से से कहती है,
सर आपको पता भी है कि आपको जाना कहाँ है? आपके भाई रूही को लेकर कहाँ गए हैं, या आप यूं ही इधर उधर उन्हें खोज रहे हैं? सर प्लीज आप किसी को कॉल करके पता कीजिए कि आपके भाई कहाँ हैं, क्योंकि हमें जल्द से जल्द रूही के पास पहुंचना होगा। पता नहीं वे बेचारी किस हालत में होगी।